ये गांव तो आपका है ना, और आप अगर इस गांव में हमें नहीं घुमाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कहां क्या चीज है क्या नहीं, और आपके बिना क्या मजा आएगा? आस्था सबकी बात सुनकर अब सोच में पड़ गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि गांव में आने का शायद फिर से उन्हें ये मौका ना मिले। इसीलिए आस्था ने उन्हें उदास मन से कहा, ठीक है, आप लोग परेशान मत हो, हम आप लोगों के साथ जरूर चलेंगे, हम चेंज करके आते हैं। ऐसे बोलकर आस्था वहां से चली गई थी। वहीं अरमान भी अब आस्था के ठीक पीछे पीछे जाने लगा था, क्योंकि आस्था का मूड अभी भी खराब था और आस्था को बिल्कुल भी अरमान इस तरह से उदास नहीं देख सकता था। इसीलिए जैसे ही आस्था अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर उसने सीधा बाथरूम का रुख किया। केवल आस्था का ही कमरा था जिसमें बाथरूम अटैच था, और अब आस्था बाथरूम में जाकर सीधा फ्रेश होने लगी थी। वेल, आस्था बाथरूम में अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। आस्था ने सोचा कि वो बाथरूम पहनकर कपड़े लेकर आ जाएगी और बाथरूम में चेंज कर लेगी। तो ये सोचते हुए आस्था ने शावर लेने के बाद अपने गीले बालों को खुला छोड़ दिया था, और बाथरूम पहनकर जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि अरमान बेड पर बैठा हुआ बाथरूम की तरफ ही देख रहा था। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपने सामने देखकर थोड़ा सा शर्मा गई थी। वहीं अरमान तुरंत खड़ा हुआ और आस्था के गीले बालों को थोड़ा सा झटकते हुए बोला, इस तरह से शर्माने की क्या जरूरत है वाइफी, अगर आपको किसी सामान की जरूरत थी आप मुझे बता सकती थी, कपड़े तो मैं भी बाथरूम में लेकर आ सकता था। तब आस्था ने देखा कि इस वक्त आस्था के इनर वियर भी अरमान के हाथों में थे, तो आस्था को काफी ज्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी और वो मन में सोच रही थी कि उसे इस तरह से खुले में अपने कपड़े रखने की क्या जरूरत थी। इस वक्त उसके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन अरमान आस्था का इस तरह से शर्माना एंजॉय करने लगा था, और अचानक अरमान ने आस्था के कंधे पर अपने होठों को रख दिया था, वहां पर किस करने लगा था। अरमान के प्यार पर आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तब अरमान बड़े ही सिडक्टिव वॉइस में आस्था के कान के पास जाकर बोला, क्या हम बाथरूम में चलें? तब आस्था ने तुरंत मौका देखकर अरमान के हाथों से अपने कपड़े छीन लिए थे और दोनों तरफ गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें हमारा बाहर इंतजार कीजिए, हम आ रहे हैं ना चेंज करके। ऐसे बोलकर आस्था तो जल्दी ही बाथरूम में घुस गई थी। तब अरमान आस्था की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना ना रह सका, और जल्दी ही आस्था चेंज करके जैसे ही बाहर आई, अरमान बड़े ही प्यार से आस्था को देख रहा था। आस्था बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। इनफैक्ट आज से जो थोड़ी देर पहले उदास उदासी महसूस कर रही थी, अरमान के प्यार से उसकी उदासी काफी हद तक कम सी हो गई थी। तब अरमान ने आस्था के गाल को बड़े ही प्यार से छूते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पति अरमान सिंघानिया है, वो सब देख लेगा। तब आस्था ने मुस्कुराकर अरमान के सीने पर अपना सर रख दिया था और कुछ देर आंखें बंद करके खुद को एनर्जी देने लगी थी। आस्था को लगने लगा था कि उसकी एनर्जी उसके हस्बैंड मिस्टर अरमान सिंघानिया से है और अरमान ही उसका सुकून है। वहीं वंशिका जलती हुई आंखों से अरमान और आस्था दोनों को देख रही थी, क्योंकि जब अरमान आस्था के पीछे पीछे गया था तब क्योंकि अरमान ने खीर नहीं खाई थी और सारी खीर की ट्रे सुमित ने अपने पास रख ली थी, तब राधिका फिर एक बार और खीर लेकर आ गई थी, तो उसने पूछा, अरमान भाई कहाँ गए? तब वंशिका बोली, वो शायद उस साइड गए हैं, आप मुझे दे दीजिए, मैं देकर आती हूँ मिस्टर सिंघानिया को खीर। कहीं ना कहीं वंशिका खीर के बहाने अरमान के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहती थी कि अरमान कब क्या करता है कहाँ जाता है। तो वो आस्था अरमान के कमरे के बाहर आ गई थी और उसने अरमान और आस्था दोनों को एक साथ गले से लगे हुए देख लिया था। तब वंशिका अरमान को गुस्से से देखते हुए बोली, बस कुछ दिन और मिस्टर अरमान सिंघानिया, कुछ दिन और जियो अपनी बीवी के साथ, उसके बाद तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वंशिका बड़ी खतरनाक लग रही थी। तभी आस्था की नजर दरवाजे पर खड़ी हुई वंशिका पर पड़ती है और जल्दी से अरमान से अलग हटकर खड़ी हो गई थी और वंशिका की ओर देखते हुए बोली, वंशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, आओ ना अंदर आओ। तब आस्था की आवाज सुनकर वंशिका अपने प्लानिंग से बाहर आई और फटाफट से आस्था अरमान के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, ये खीर राधिका दीदी ने आप लोगों के लिए भेजी है। आस्था ने तुरंत वंशिका की लाई हुई खीर ले ली थी, लेकिन अरमान ने खीर खाने से मना कर दिया था। तब वंशिका ने एक नजर आस्था अरमान की ओर देखते हुए कहा, मैं चलती हूँ, और जल्दी ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो वहां से चली भी गई थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसका चेहरा एक बार फिर से डार्क हो गया था। वहीं अरमान सिंघानिया बड़ी ही अजीब नजरों से वंशिका को देख रहा था, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने अपनी जिंदगी का कितना सारा हिस्सा लोगों को समझने बुझने में ही गुजारा था, लेकिन वंशिका को देखकर उसे अजीब सी नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही थी। फिलहाल के लिए उसने इस बात को छोड़ दिया था और आस्था से बोला कि वो तैयार हो जाए, आज फिर वो लोग गांव घूमने के लिए चल रहे हैं। तो वहीं आस्था तो ऑलरेडी तैयार ही थी। अब सब लोग एक साथ फिर से जमा हो गए थे। इस बार उन्होंने दो टांगों की जुगाड़ किया था और सभी शहरी लोग उसमें बैठकर जाने लगे थे। अब ध्रुव, वंशिका, रौनक, आहान, साथ साथ एंजल, अविनाश इस वक्त एक ही बग्गी में थे, और अरमान, आकाश, सुमित, राधिका और आस्था
साथ साथ रश्मि, वेल तीनों कपल अलग अलग बग्गी में थे। लेकिन जैसे ही आस्था एक जगह से गुजरी तो उसकी नजर एक खाली जगह पर पड़ी जहां पर ट्रैक्टर से कुछ काम हो रहा था। अब जैसे ही आस्था ने ट्रैक्टर देखा और वहां पर ये देखा कि उसी वक्त लोग अपने खाली पड़े जमीन में गन्ना बो रहे थे, अब तो आस्था खुशी से एक्साइटमेंट से चीख पड़ी और अरमान की ओर देखकर बोली, अरमान जी अरमान जी, वो देखो ना खेतों में गन्ना उगाया जा रहा है, प्लीज प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आता है गन्ना उगाने में और कितने दिन से मैंने ट्रैक्टर की सवारी भी नहीं की, प्लीज प्लीज चलिए ना। अब जैसे ही आस्था ने बच्चों के जैसी जिद की, सब लोग आंखों में प्यार लिए आस्था को देखने लगे थे। वहीं आहान और ध्रुव भी एक्साइटेड होकर बोले थे, अरे वाह भाभी, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, और क्या बात है, गन्ना इस तरह से होता है और इसके क्या फायदे हैं? तब आस्था जल्दी से बोली थी, आपको पता है जो आप लोग गुड़ शक्कर चीनी खाते हो वो सब यहीं से तो आता है, इसी तरह से तो उगाया जाता है। जल्दी ही चतरपटर आवाज में आस्था ने गन्ने की पूरी हिस्ट्री खोलकर रख दी। अब तो आहान और ध्रुव आंखों में चमक लिए अरमान की ओर देखकर बोले, भाई आप चाहे कुछ भी बोलो लेकिन हम नहीं रुकने वाले, हम तो जा रहे हैं गन्ना उगाने के लिए। अरे भाई, हम लोग इतने सालों से चीनी शक्कर खाते हुए आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनको थोड़ा सा रिटर्न करें, कहीं अगर गन्ना बुरा मान गया तो कहीं मुझे अरमान भाई की तरह कड़वी कॉफी पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अब जैसे ही आहान ने मुंह बनाते हुए ये कहा, सबके सब मुस्कुरा दिए थे। वहीं अरमान घूर कर आहान को देखने लगा था। वहीं आहान जल्दी से बोला था, अरमान भाई प्लीज प्लीज गुस्सा मत होइएगा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें भी गन्ना उगाने में थोड़ा से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बोलकर जल्दी ही वो लोग टांगा से उतर गए और आस्था भी अरमान की ओर बेचारे की नजरों से देखने लगी और बोली थी, ओह हम समझ गए कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, अरे आपने तो एक से बढ़कर एक बड़ी से बड़ी गाड़ियां चलाई हैं, भला आपसे ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा।
जैसे ही आस्था ने ये बोला, सुमित आकाश सबके सब मुंह खोलकर आस्था की ओर देखने लगे थे, क्योंकि सिर्फ आस्था में ही इतनी हिम्मत थी जो कि अरमान सिंघानिया को कुछ भी कहने का दम और टैलेंट दोनों ही रखती थी। फिलहाल अब आस्था की बात सुनकर अरमान जोश में आ गया था और फटाफट से आस्था को उसने तुरंत तांगे में से गोद में उठा लिया था, और आहान और ध्रुव तो गन्ना लगाने खेत में लग गए थे। वहीं सब के सब मुस्कुराकर एक तरफ उन लोगों को देखने लगे थे। अरमान ने जल्दी ही ट्रैक्टर वाले की ओर देखा था। अब ट्रैक्टर वाले को देखकर आस्था तुरंत बोली थी, अरे रमेश भैया, ये हमारे हस्बैंड हैं और हम उनके साथ ट्रैक्टर की सवारी करना चाहते हैं, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए अपना ट्रैक्टर दे दीजिए ना। जैसे ही आस्था ने रिक्वेस्ट की, अरमान तुरंत आस्था के कानों में सरगोशी करते हुए बोला था, आप चाहें तो मैं बंदूक की नोक पर भी उससे ट्रैक्टर ले सकता हूँ। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था ने तुरंत अरमान के सीने में अपना सर छुपा लिया था और बोली थी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मरवाएंगे क्या, ये हमारा गांव है और अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो सब लोग क्या सोचेंगे कि हमारा पति कोई चोर उचक्का है। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं सुन सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें अपने तरीके से लेने दीजिए। वहीं रमेश तुरंत ट्रैक्टर पर से नीचे उतर गया और आस्था को देखकर बोला था, अरे आस्था तुम ये सब तुम्हारे जानने वाले हैं। तब आस्था ने प्यारी सी शक्ल बनाकर कहा था, हाँ हाँ रमेश कैया, ये सब हमारे दोस्त और हमारा परिवार है, ये हमारे पति हैं और आपको तो पता है कितने दिनों से हमने ट्रैक्टर की सवारी नहीं की, तो बस हम वही ट्रैक्टर की सवारी करना चाहते हैं। अब ये बोलकर आस्था रमेश की ओर देखने लगी थी और रमेश ने जल्दी अपने ट्रैक्टर की चाबियां आस्था को पकड़ा दी थी और बोला था, हाँ हाँ ठीक है क्यों नहीं, ये शहरी मेहमानों को ट्रैक्टर की सैर करवाओ, वैसे भी शहरी लोग हैं, इन्होंने कहा ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे। ये बोलकर रमेश मुस्कुरा दिया था, लेकिन अरमान अब रमेश की बातों का तन समझते हुए तुरंत ही गुस्से में आ गया और ट्रैक्टर की चाबी हाथ में लेकर फटाफट से उसने आस्था को उसमें बैठने का इशारा किया और जल्दी ही अरमान ने फुल स्पीड से ट्रैक्टर पूरे के पूरे ग्राउंड में चलाना शुरू कर दिया था। और अरमान की ट्रैक्टर चलाने की स्किल देखकर सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी, क्योंकि अरमान किसी प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह लग रहा था। ऐसा उसे देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वो पहली बार ट्रैक्टर चला रहा था। वहीं अरमान को इस तरह से बेबाकी से ट्रैक्टर चलाते हुए देखकर आहान ध्रुव से बोला था, भाई ये सब क्या हो रहा है, मैंने अरमान भाई को आज तक खुद से अपनी गाड़ी भी सही से ड्राइव करते हुए नहीं देखा, उसकी गाड़ी भी ड्राइवर ही ड्राइव करते हैं, लेकिन ये क्या, अरमान भाई तो यहाँ इस तरह से ट्रैक्टर चला रहे हैं मानो कि वो किसी ट्रैक्टर की रेस में आए हों और वो बस हर हाल में जीतना चाहते हों। वहीं आस्था तो खुशी से चीख पड़ी थी और जल्दी से अरमान के गले में बाहें डालकर बोली थी, वाह अरमान जी, ये हमारी बेस्ट राइड है, सच में मज़ा आ गया। ये बोलकर आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वहीं वंशिका आस्था को मुस्कुराते हुए देखकर खुश भी हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बस कुछ दिन और तुम इस तरह से खुशियाँ मना लो आस्था, और मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाएगा। फिलहाल अब ट्रैक्टर की सवारी करने के बाद आस्था ने अरमान को ट्रैक्टर रोकने के लिए बोल दिया था और बोली थी कि उसका सर अब घूम रहा है, वो ज्यादा देर ट्रैक्टर की सवारी नहीं कर सकती है। आस्था की बात सुनकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी ही फटाफट उसने ट्रैक्टर रोक दिया था। और कुछ देर तक सब लोगों ने गन्ना किस तरह से जमीन में बोते हैं ये सब चीज देखी थी और आहान ध्रुव ने अच्छे से अपने कैमरे में उन्हें कैद कर लिया था और फिर जल्दी ही वो लोग वहां से आगे बढ़ चले थे। इस बार आस्था उन्हें गांव का दूसरा छोर दिखाने गई थी। वहां पर बड़ा ही खूबसूरत सा तालाब था, घने घने पेड़ थे जहां पर पंछी चहक रहे थे, कई जगह तो बटरफ्लाई उड़ रही थी। सब लड़कियां बटरफ्लाई को देखकर एकदम से चीखने लगी थीं और बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करने लगी थीं। आहान सारी यादें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वापस शहर लौट के बाद उन सभी यादों को देख सके। वहीं ध्रुव बार बार वंशिका के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों के बीच में हल्का फुल्का बीच बीच में टच हो रहा था और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वंशिका का इस बीच पूरा ध्यान अरमान पर था। वो मौका देख रही थी कि अरमान ऐसी ट्रिप पर कहीं ना कहीं अकेला हो और वो मौका देखकर उसकी जान ले ले, क्योंकि वंशिका ने अपने साथ एक इतना खतरनाक इंजेक्शन कैरी किया था कि अगर वो इंजेक्शन अरमान को लगा देती है तो अरमान की जान पल भर में ही चली जाएगी। आखिरकार वंशिका मेडिकल लाइन में थी। फिलहाल भले ही उसने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था लेकिन अच्छी तरह से वो सारी चीजों की तहकीकात कर चुकी थी कि कौन सा चीज कौन सी है, क्या लोगों को नुकसान दे सकता है क्या नहीं। बस वो इस ट्रिप पर अरमान के अकेला होने का इंतजार कर रही थी। वंशिका जानती थी कि अरमान कितना ज्यादा ताकतवर है, कितना ज्यादा हट्टा कट्टा है। वंशिका जैसी मामूली सी नाजुक लड़की अरमान का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसे धोखे से ही अरमान की जान लेनी थी। वेल, इस बीच वो अपना बैग अपने साथ कैरी करके रखे हुए थी। एक मिनट के लिए भी उसने अपना बैग खुद से अलग नहीं किया था। साथ ही साथ वो एक फाइल हाथ में पकड़े हुए थी और गांव के लोगों पर जो कुछ भी उसे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था वो लिखते भी जा रही थी। गांव के जंगल और साथ ही साथ हरा भरा इलाका और वगैरह देखने के बाद सबके सब तालाब के पास आए थे और लड़कियां तो पैर लटकाकर तालाब के ठंडे ठंडे पानी में बैठ गई थी, क्योंकि तालाब में उस वक्त बड़ी ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मछलियां थी जो उनके पैरों को छू रही थी, तो सभी बहुत ज्यादा खुशी से चीख पड़ती। वहीं आहान रौनक के चेहरे की खुशी को देख रहा था। रौनक को देखकर ऐसा लग रहा था कि रौनक अपने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गई है। रौनक एक बार फिर अपनी जिंदगी की तरफ लौट गई थी। सब कुछ एकदम खुशी खुशी और हैप्पी हैप्पी सा लग रहा था। इस बीच एंजल थोड़ी उदास थी लेकिन राधिका के साथ उसकी अच्छी खासी बॉन्डेड हो गई थी और राधिका के साथ अच्छे से अपना टाइम पास कर रही थी। वेल, अब रौनक को एक शरारत सूझी और उसने आहान की ओर देखकर कहा, अच्छा चचुंदर, क्या तुम तालाब में से मछली पकड़ कर ला सकते हो? अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आहान उसकी ओर देखकर हंसते हुए बोला, अच्छा इसमें क्या बड़ी बात है, अरे मैं तो अभी गांव में मछुआरों को ढूंढकर लेकर आता हूँ और फिर देखो उन मछुआरों से कितनी सारी ढेर सारी मछली पकड़वा कर लाता हूँ। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, रौनक ने मुंह बना लिया और बोली, खुद कुछ काम खुद भी कर लिया करो, क्या तुम्हें कोई काम करना नहीं आता क्या? ये बोलते हुए रौनक आहान को उकसाने की कोशिश करने लगी थी। और वहीं आहान अपना कैमरा ध्रुव को थामकर रौनक के करीब आकर तालाब के किनारे ही बैठ गया था। उसकी ओर घूर कर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अरे मेरा नाम आहान सिंघानिया है और शायद तुम भूल रही हो कि मेरा पूरा 36 इंच का डोला है, मैं हर एक काम खुद कर सकता हूँ, समझी?